स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है मसीह की आज्ञा। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो इस वचन को सुन करके इस कार्यक्रम के आशीषों को पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मुझे आशा है कि आप भी अपने आशीषों को हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज हम दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसके अंतिम भाग में हैं। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, सत्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें समझाते और सिखाते हैं। आज जब हम दूसरा यूहन्ना की पत्री से अपने अध्ययन को कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब आपका वचन रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो आपका वचन सामर्थ्य के साथ पहुंचे और प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके हृदयों को स्पर्श करने पाए, ताकि वे भी आपकी सत्यता को समझकर अपने जीवन में आपको जगह दे सकें। आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें, हमें आशीषित करें, ताकि हर एक श्रोता आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि मसीही जन वह है जो धर्म के काम करता है और अपने भाइयों से प्रेम करता है, परंतु इससे बढ़कर सत्य पर चलता है और सत्य यह है कि प्रभु यीशु कुंवारी से जन्मा और क्रूस पर हमारे पापों को उठाकर अर्थात लेकर अपनी जान दे दी तथा फिर से जी उठा। वह पूर्ण मनुष्य है क्योंकि यूहन्ना ने उसे छू करके देखा और वह पूर्ण परमेश्वर है। यदि इससे हटकर कोई अन्य शिक्षा दे तो वह मसीह का विरोधी है। ऐसों से अति सावधान रहने की आवश्यकता है और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि वे परमेश्वर से नहीं है। जी हां, मसीही जन होने का अर्थ है प्रभु यीशु का विश्वासी होना, उसका अनुयायी होना। यदि आप उसके कुंवारी से जन्म लेने पर, उसके ईश्वरत्व पर, उसके चमत्कारी जीवन पर और क्रूस पर उसके मुक्तिदायक कार्य पर विश्वास न करें तो आप उसके अनुयायी नहीं हो सकते हैं। मेरे मित्रों, हमें स्पष्ट समझना है कि गलत संगति से आप उद्धार से वंचित नहीं होते हैं, परंतु आप संकट में पड़ जाते हैं यदि हम किसी ऐसे पंथ में सम्मिलित हो जाएं जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, तो निश्चय ही हम अपना प्रतिफल खो देते हैं। हर एक विश्वासी को प्रतिफल के प्रयास में लगे रहना है कि एक दिन उसके मुंह से सुने कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मेरे मित्रों, पौलुस ने भी कहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं? उसी के लिए हमें बढ़ना है, उस मुकुट को पाने के लिए, ताकि हर एक विश्वासी उस इनाम को पा सके जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और दूसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके 9 पद को पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से अलग बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, अर्थात जो सत्य से आगे चरम सीमा पार कर जाता है। तत्वज्ञानी अपने आप को यही कहते थे, वे कहते थे कि उन्हें अन्यों से अधिक ज्ञान प्राप्त है, लोगों के अंदर में ज्ञान का घमंड है, वे प्रवंचित संत हैं। आज भी ऐसे विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि उनके पास वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे पास में नहीं है। मुझे पत्रों में लिखा जाता है कि मुझ में ज्ञान की कुछ कमी है। मैं मानता हूं कि मुझ में कमी है, परंतु मेरे विचार में वे इस योग्य नहीं कि मुझे बताएं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनमें मुझसे अधिक ज्ञान है। यह नहीं, उनमें भाइयों के लिए प्रेम भी नहीं है। इसका अर्थ है कि वे मसीह की शिक्षा का पालन नहीं करते हैं। यही उनके चरित्र का प्रकाशन है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी समूह था, होली रोलर्स, जिनके विषय एक ग्रामीण प्रचारक ने बिशप मूर से पूछा, क्या वे स्वर्ग जाएंगे? बिशप मूर ने कहा, यदि वे मसीह की शिक्षा से आगे न बढ़ें। मेरे विचार में यूहन्ना भी यही हमसे कह रहा है, जो मसीह की शिक्षाओं में स्थिर नहीं रहता वह परमेश्वर में नहीं और न ही उसके पास परमेश्वर है। एक बार मैं कुछ आध्यात्मिक ज्ञाताओं के बारे में पढ़ रहा था कि उनका साक्षात्कार एक प्रचारक समूह से हुआ। उन्होंने एक मत यह निर्णय लिया कि उन्हें कुछ विषयों पर रूढ़िवादियों के प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और ये विषय हैं प्रभु यीशु का कुंवारी से जन्म, प्रभु यीशु का ईश्वरत्व और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु की मृत्यु। वे सोचते थे कि उन्होंने बुद्धि की चरम सीमा और शुद्धता की परिपूर्णता प्राप्त कर जीवन में परम हित की प्राप्ति कर ली है। वे शिरोमणि हो गए हैं और हम दुर्जनों को नीचा समझते हैं। जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु के मृत्यु पर विश्वास करते हैं, मेरे अनुसार उन्होंने अपराध किया है। वे प्रभु यीशु की शिक्षाओं में विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास परमेश्वर नहीं है, अतः संदेह नहीं कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परमेश्वर मरा हुआ है। कई लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर मरा हुआ है। सच तो यह है कि परमेश्वर नहीं, वे मरे हुए हैं। इफिसियों के पत्री 2:1 के अनुसार वे अपने पापों में मरे हुए हैं। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। लिखा है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बने रहते हैं तो आपके पास पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों ही हैं, और आपको पुत्र के द्वारा पिता तक पहुंचने का मार्ग भी प्राप्त होता है, उसके अद्भुत अनंत अनुग्रह के द्वारा से। यह सब इसलिए कि आप प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बने रहते हैं। कहने का अर्थ है बने रहने। जी हां, बने रहने का अर्थ है स्थिर रहना। यह एक अस्थाई व्यवस्था है। किसी ने मुझे बताया कि वर्षों पूर्व उसने किसी मुक्त विचारक उपदेशक से पूछा था कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। तो उसने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके विचारों को सिर आंखों पर रखता हूं, परंतु वह पुराने विचार के हैं और वर्षों से बदले नहीं हैं। उन्होंने लेश मात्र भी विकास नहीं किया है। वह उपदेशक एक असाधारण मनुष्य था और मैं उसे मानता भी हूं, क्योंकि वह एक सत्यनिष्ठ मुक्त विचारक है। मेरे विचार में उसे सेवा में नहीं होना चाहिए, परंतु मैं उसके इस टिप्पणी से फूला नहीं समाया, क्योंकि मैं न तो बदला हूं और न ही बदलना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है कि जो मसीह की शिक्षाओं में बना रहता है और बदलता नहीं, उसके पास परमेश्वर है और पुत्र भी, और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। दूसरा यूहन्ना के पत्र 1:10 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। मेरे मित्रों, मैं इससे अधिक कठोर वाक्य और दूसरा नहीं सोच सकता। यूहन्ना ने यह पत्र चुनी हुई महिला को संबोधित किया है। वह संभवतः कलीसिया की एक प्रतिष्ठित महिला थी जो अपने अतिथि सत्कार के लिए अधिक पहचानी जाती थी। वह शायद समृद्ध महिला थी जो अतिथियों की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देती थी। वह अत्यधिक उदार महिला भी थी। अतः वह प्रभु के नाम में आने वाले इन तत्वज्ञानियों का भी भरपूर अतिथि सत्कार करती थी, जैसा कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, और जो ढोंगी और गलत शिक्षक आते हैं उनका भी वे सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, दान देते हैं और बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने उसे क्यों नहीं पहचाना। यहां पर यूहन्ना कहता है उस महिला के बारे में कि वह प्रभु के नाम में आने वाले इन तत्वज्ञानियों का भी भरपूर अतिथि सत्कार करती थी, परंतु उसका मन ना माना तो शायद उसने यूहन्ना को लिखकर अपने मन का शक व्यक्त कर दिया कि वह ऐसी स्थिति में क्या करे, क्या वह इनका अतिथि सत्कार करे या ना करे। यदि वह उन्हें अनदेखा करे तो उसे स्वयं को बुरा लगेगा। अतः उसे इन झूठे विश्वासियों अर्थात प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करने वाले उपदेशकों को क्या अपने घर में आने देना चाहिए या नहीं। मेरे मित्रों, हमें एक बात ध्यान में रखना है कि रोमी साम्राज्य में उच्च कोटि के होटल नहीं थे। उस समय जो सराय होते थे, ठहरने का स्थान होते थे, वे अच्छे मनुष्यों के लिए ठहरने का स्थान नहीं थे। वहां तो आगंतुक को बिस्तर भी नहीं मिलता था। आपको अपना बिस्तर साथ में लेकर के जाना होता था। जैसा कि आज गांव देहातों में लोग जाते हैं तो अपने बिस्तर को साथ में लेकर के जाते हैं। आपको अपना बिस्तर बिछाने के स्थान का भाड़ा देना होता था। लोग आपके चारों ओर सोते थे। यात्रियों के लिए बस यही व्यवस्था थी और यही कारण था कि ग्रामीण शील प्रचारकों के लिए विश्वासी अपने द्वार खोले रखते थे। कोई भी आता था तो उनका वे स्वागत करते थे। प्रचारक जिस नगर में जाते थे उस नगर में उनका स्वागत करने के लिए विश्वासी हमेशा तैयार रहते थे। मेरे प्रियो, आपको स्मरण है कि पौलुस भी इसी प्रकार अक्विला और प्रिस्किला के घर ठहरा था। आरंभिक कलीसिया का यही अभ्यास था और लोग एक दूसरे के वचन को सुनते और उत्साहित होते थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे एक मित्र की माता भी प्रचारकों को खाने पर आमंत्रित करती थी और रात ठहराती भी थी। मेरे पिता भी विश्वासी थे और वहां के आसपास के लोग उन प्रचारकों को देखते थे और उन्हें खाने के लिए अपने अपने घर बुलाते और ठहराते थे। परंतु कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ गरीब थे, अतः प्रचारकों की दिल खोलकर वे सेवा नहीं कर पाते थे। वहां आज भी ऐसा ही है, क्योंकि वहां होटल नहीं है। आज मेरी राय यही है कि आप उन्हें होटल में ठहराएं तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रचारक को अकेलापन चाहिए कि वह अध्ययन कर पाए और प्रार्थना कर पाए। परिवार के साथ उसे ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। परंतु मैं कुछ परिवारों को सराहता हूं, क्योंकि जब मैं उनके साथ ठहरता हूं तो मुझे घर जैसा वातावरण मिलता है। वे मुझे पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि जो चाहूं करूं। उनके साथ रहना वास्तव में अति आनंददायक होता है। अतः उस महिला के पत्र के उत्तर में यूहन्ना दो टुक बात कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अब यूहन्ना जो कहता है वह हम सब की चेतावनी के लिए है। तो आइए हम पढ़ें दूसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके 11 पद को। लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। यदि आप किसी पाखंडी का अतिथि सत्कार करते हैं और उसे सहयोग देते हैं, दान के द्वारा, भोजन के द्वारा या किसी और बातों के द्वारा, तो आप उसके सहयोगी हैं, उसके साझेदार हैं। यही कारण है कि आपको पूरी छानबीन करके ही किसी को सहयोग देना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि आप किसी गलत व्यक्ति या संस्था को सहयोग देते हैं तो परमेश्वर आपको उसका सहकर्मी मानता है, क्योंकि आप भी उसमें भागी हैं। इसलिए आप देखें कि आप कहां पर अपने धन राशि को दे रहे हैं। आप छानबीन करें, यदि आपको सही लगता है कि वचन के प्रसारण के लिए या वचन के लिए लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं और वो धन राशि पहुंच रहा है, तो आप उन्हें सहयोग दें। अन्यथा आप जानें कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में ना पड़ गए हों। लुका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 1-13 पद में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था, जिसमें एक धनी ने अपने कर्मी को नौकरी से निकाल दिया। इस कर्मी ने क्या किया? उसने अपने मालिक के सब लेनदारों से संपर्क किया और भुगतान करने पर उन्हें भारी छूट दी। वे सब उससे बहुत प्रसन्न हुए। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसकी आवश्यकता के समय में वे उसका साथ दें। यह काम वास्तव में अनुचित था और प्रभु यीशु ने भी इस व्यवहार का उचित नहीं परंतु कहा कि गलत ही है। यीशु ने कहा, इस संसार की संतान ज्योति की संतान से अधिक बुद्धिमान है। वे व्यवहार जो दिखाते हैं बिल्कुल भिन्न है। जी हाँ, वे व्यापार जगत में अति चतुर हैं। आज अधिकांश जन शीघ्र अति शीघ्र पैसा कमाना चाहते हैं, जो कुत्तों की लड़ाई के जैसा है। यदि सांसारिक मनुष्य अपना पैसा निवेश करने में चतुर है तो आपके विषय क्या कहा जाए? क्या आप किसी की कहानी सुनकर पिघल जाते हैं और दान दे देते हैं? क्या आप विदेश से आए बच्चों के चित्र, अनाथों के चित्र देखकर पिघल जाते हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपका पैसा उन तक पहुंच रहा है? क्या आज आप भावनाओं में बह रहे हैं? यदि आप प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करने वालों के साथी हैं तो प्रभु यीशु ने आपके लिए जो किया उसका आप इनकार करने वालों को सहयोग देते हैं। यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको दोषी ठहराता है, वह आपसे लेखा लेगा। उसने कहा है कि इस संसार की संतान हमसे अधिक चतुर है। हमें बुद्धिमान बनना है। आज दया और दान एक घोटाला हो गया है। झूठे बहाने बनाकर पैसा ऐंठने का ठग व्यापार जोरों पर है। यही कारण है कि मैं कभी कभी कहता हूं कि मैंने अनाथ आश्रम नहीं खोला है। मेरा काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, और आपका भी यही काम है। मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप जो दान दे रहे हैं, क्या वह दान सही स्थान पर सही चीज के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है या नहीं। कई बार हम में से कई लोग कहते हैं कि हमने दान दे दिया, अब उसकी मर्जी, को क्या करता है। जी नहीं, आप भी भागीदारी हैं, आप भी साझेदार हैं और उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। यदि आपने गलत स्थान पर गलत लोगों को दान दिया है तो उसके प्रतिभागी आप भी हैं। परंतु यदि आपने सही स्थान पर सही लोगों पर सही सेवा के लिए दान दिया है तो आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए आप सचेत हों, ध्यान दें कि आप अपने धन को कहां दे रहे हैं, कहां लगा रहे हैं। आइए हम अंतिम भाग में पहुंचते हैं, देखते हैं व्यक्तिगत अभिवादन। दूसरा यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूहन्ना कहता है, मैं लिखने की अपेक्षा अपने शब्दों में मुख से कहता तो अधिक अच्छा होता। दाऊद ने भी यही कहा था, भजन संहिता 45 उसके 1 पद में, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। दाऊद ने मसीह संबंधित यह भजन लिखना आरंभ किया तो उसने कहा, काश मैं अपने मुख से सुना पाता, मैं लिखने से अधिक स्पष्ट बोलकर सुनाता। यही कारण है कि मुझे रेडियो प्रसारण की सेवा बहुत अच्छी लगती है। मैं लिखने से कहीं अच्छा कह करके आपको समझा सकता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं, लिखा है, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस चुनी हुई महिला के बच्चे थे या उनकी संगी कलीसिया के सदस्य। उस चुनी हुई महिला अथवा उस स्थानीय कलीसिया को अभिवादन भेज रहे थे। यह छोटी पत्री अति महान है और इसका संदेश प्रत्येक विश्वासी के लिए एक चेतावनी है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना इस छोटी सी पत्री के द्वारा हमें सचेत करता है कि कैसे हम झूठे शिक्षकों से बचें, कैसे हम उनका सेवा न करें, और इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के सत्यता पर और उसके प्रेम में कैसे बने रहें। इस बात को इस छोटी सी पत्री के द्वारा वह हमें सिखाता है। और इसी के साथ यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा यूहन्ना की पत्री, जो सिर्फ एक ही अध्याय का है, यहां पर समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम एक नए पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप इस यूहन्ना की पत्री को और अधिक गहराई से पढ़ें, समझें, अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर की संगति में बढ़ने पाए। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबका सहायक हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
अंधियारे डगर